पृष्ठ संख्या 20, अध्याय 2, मृदंग की उत्पत्ति, विकास और स्वरूप। उत्पत्ति। कुछ विद्वानों के मतानुसार मृदंग भारतीय संगीत का आदि तालवाद्य है, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा हुई। इस संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। मनुष्य की अति श्रद्धालु स्वभाव का यह एक पहलू है कि जिस वस्तु के रहस्य से वह अनभिज्ञ होता है, उसका संबंध वह किसी न किसी देवी देवता के साथ जोड़ देता है। इसी प्रकार मृदंग जैसे प्राचीनतम तालवाद्य का संबंध भी देवी देवताओं के साथ जोड़ दिया गया होगा। वैसे भी भारतीय जनता में देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में दो किंवदंतियां यहाँ प्रस्तुत हैं। भगवान शंकर ने जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया तो आनंद के अतिरेक में वे नृत्य करने लगे, किंतु वह नृत्य लय में नहीं था, अतः इससे पृथ्वी डवाडोल होने लगी। जगत सृष्टा ने जब देखा कि पृथ्वी रसातल में जा रही है तो वे भयभीत हुए और प्रलय निवारण हेतु उन्होंने तुरंत त्रिपुरासुर के शरीरावशेष से मृदंग की रचना करके विजय शंकर के नाम के साथ ताल देने के लिए उनके पुत्र श्री गणेश को प्रेरणा दी। गणपति जी के मृदंग वादन से प्रभावित होकर शंकर जी ताल में नृत्य करने लगे और इस तरह मृदंग का उद्भव एवं ताल का प्रादुर्भाव होने के कारण पृथ्वी रसातल में जाने से बच गई। यह एक कपोल कल्पित कथा लगती है जो आज के वैज्ञानिक युग में मनुष्य के बौद्धिक तर्क वितर्क के साथ खरी नहीं उतरती। पुष्कर वादियों के लिए नाट्यशास्त्र में भी एक वृतांत है। स्वाति और नारद संगीत वाद्यों के आदि करता है। एक बार स्वाति एक सरोवर पर पानी लाने गए, अचानक वर्षा होने लगी। वायु वेग से सरोवर में पानी की बड़ी बड़ी बूंदों के पड़ने के कारण पद्म की छोटी बड़ी और मंझली पंखुड़ियों पर वर्षा बिंदुओं के आघात से विभिन्न ध्वनियां उत्पन्न होने लगी। उनकी अव्यक्त मधुरता को सुनकर आश्चर्यचकित स्वाति ने उन ध्वनियों को अपने मन में धारण कर लिया और आश्रम पर पहुंचते ही विश्वकर्मा को इसी तरह के शब्द उत्पन्न करने के लिए एक वाद्य बनाने का आदेश दिया। फलतः तीन मुखों से युक्त मृत मिट्टी से पुष्कर नामक वाद्य की सृष्टि हुई। बाद में उसका पिंड लकड़ी या लोहे से बनाया गया। तब से हमारे मृदंगादि चमड़े से मढ़े हुए वाद्यों की सृष्टि हुई। आगमों में बताया गया है कि मिट्टी से बनाए गए मृदंग की सृष्टि ब्रह्मा ने की है और शिव तांडव का साथ देने के लिए ही उसकी उत्पत्ति हुई। प्राचीन पुष्कर आज व्यवहार में नहीं है, पर मृदंग आदिकाल से अब तक अवनद्यवादियों में मुख्य स्थान पाता रहा है। पृष्ठ संख्या 21, विकास और स्वरूप। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में हमें सर्वप्रथम मृदंग के आकार, प्रकार तथा शैली का विशद वर्णन मिलता है, जो हमारी कला संस्कृति का मूल ग्रंथ माना जाता है। भरत मुनि के ने नाट्यशास्त्र में पुष्कर वाद्यों के रूप में मृदंग, पड़व तथा दर्दुर की चर्चा की है और मृदंग को त्रिपुष्कर कहकर उसके तीनों अंगों का विस्तृत विवेचन किया है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में सिंधु घाटी की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का जो पता चलता है, इसमें कुछ मूर्तियां ऐसी प्राप्त हुई हैं जिनके हाथ में वाद्य दिखाई देते हैं। एक मूर्ति के गले में लटकता हुआ ढोल जैसा वाद्य है और यह वाद्य आधुनिक मृदंग की के पूर्वज जैसा भी प्राप्त होता है। इस विधान का उल्लेख करते हुए स्वामी प्रज्ञानंद जी लिखते हैं कि इन वन ऑफ द टेराकोटा फिगर्स अ काइंड ऑफ ड्रम इज टू बी सीन हैविंग फ्रॉम द नेक एंड टू सेल्स वी फाइंड अ प्रिजर्वर ऑफ द मॉडर्न मृदंग विद स्किन्स एट आइदर इंड्स। हमारी भारतीय संस्कृति की ज्ञान समृद्धि वेदों में संकलित है। वैदिक काल में संगीत अपने चरमोत्कर्ष पर था। सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों में उसका प्रयोग अनिवार्य समझा जाता था। स्त्रियों में भी उसका काफी प्रचार था तथा आम जनता में उसके प्रति सम्मान की भावना व्याप्त थी। वैदिक साहित्य में दुंदुभि भूमि दुंदुभि जैसे अमनद्य वाद्यों का तो उल्लेख उपलब्ध है किंतु कहीं भी मृदंग शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। इससे प्रतीत होता है कि वैदिक काल में मृदंग का आविष्कार नहीं हुआ होगा। पौराणिक काल में वीणा दुंदुभि दर्दुर मृदंग पड़व पुष्कर जैसे वाद्यों का प्रचार था। ऐसा उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। रामायण काल में संगीत का पर्याप्त विकास हो चुका था। रावण स्वयं उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे अतः उनके राज्य में संगीत और संगीतज्ञों का बहुत आदर होता था। जीवन निर्वाह की चिंता न होने के कारण मनुष्य अपना अधिक समय संगीत में व्यतीत करता था। पृष्ठ संख्या 22। रामायण तथा महाभारत काल में वीणा और मृदंग का प्रचार था। तत्कालीन समाज के धार्मिक तथा सामाजिक उत्सवों का जो वर्णन मिलता है उसमें मृदंग तथा मूरज वादन का वर्णन हमें बार बार मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि उन दिनों मृदंग काफी प्रचलित था। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक काल के बाद और रामायण काल से बहुत वर्ष पूर्व मृदंग का प्रचार हो गया होगा। रामायण महाभारत में मृदंग के साथ साथ मूरज का वर्णन भी मिलता है। संगीत रत्नाकर में आचार्य सारंगदेव ने मूरज तथा मर्दल को मृदंग का ही पर्याय बताते हुए कहा है। भरत मुनि ने भी मूरज को मृदंग का ही पर्याय माना है तथा उसे अमनद्यवादियों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। उन्होंने जिस प्रकार मृदंग का त्रिपुष्कर के रूप में वर्णन किया है इससे प्रमाणित होता है कि उन दिनों मृदंग के तीन भाग थे अर्थात तीनों भागों को मिलाकर ही मृदंग वाद्य समझा जाता था। उन तीनों भागों के नाम आंकिक ऊर्ध्वक तथा आलिंगिक थे। यद्यपि कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि आंकिक ऊर्ध्वक और आलिंग तीन पृथक वाद्य थे तथापि भारत के नाट्यशास्त्र के आधार पर त्रिपुष्कर के तीन भाग थे जिन्हें भरत मुनि ने क्रमशः हरितकी यवाकृति तथा गोपुच्छ भी कहा है। दूसरी शताब्दी के अमरावती के भित्ति चित्र में पांचवी सदी के पवाया के शिल्प में छठवीं तथा सातवीं शताब्दी के भुवनेश्वर के मुकटेश्वर मंदिर में छठवीं शताब्दी के बादामी के शिल्प चित्रों में तथा अजंता की 26 नंबर की गुफा में त्रिपुष्कर का अत्यंत सुस्पष्ट चित्र शिल्प चित्र हमें देखने को मिलता है। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए स्वामी प्रज्ञानंद जी लिखते हैं। पृष्ठ संख्या 23। त्रिपुष्कर के तीन भागों में से दो खड़े होते थे जिन्हें ऊर्ध्वक और आलिंग कहा जाता था और लेटे हुए भाग को आंकिक कहा जाता था जो अंक में रखकर बजाया जाता था। सातवीं सदी के बाद स्नेह स्नेह त्रिपुष्कर की इस आकृति में परिवर्तन होता गया और 12वीं शताब्दी तक अर्थात सारंगदेव के समय तक वह पूरी तरह परिवर्तित हो गया। उससे ऊर्ध्वक और आलिंग हिस्से हट गए और आंकिक जो कि अंक में रखकर बजाया जाता था वही भाग बच गया जो आगे चलकर मृदंग या मूरज के नाम से सर्व प्रचलित हुआ। अतः आजकल हम जिस वाद्य को उत्तर भारत में मृदंग या पखावज तथा दक्षिण भारत में मृदंगम के नाम से संबोधित करते हैं वह भरतकालीन मृदंग का केवल एक भाग ही है। ऐसा अनुमान है कि भरत से लेकर सारंगदेव के समय तक जो जाति और प्रबंध गायन किसी न किसी रूप में प्रचलित था उसमें मृदंग के ही रूपों का प्रयोग होता था। आगे चलकर मध्य युग में प्रबंध गायकी तथा ध्रुपद गायन के साथ भी वह प्रयोग प्रचलित रहा होगा। बाद में भरतकालीन मृदंग कालक्रम से अल्प परिवर्तन के साथ पखावज में परिष्कृत हुआ होगा। अतः यह निशंक है कि प्राचीन एवं मध्यकालीन संगीत पद्धति का प्रमुख तालवाद्य मृदंग ही था। भारत के आधुनिक तालवाद्यों की उत्पत्ति तथा विकास में भी हमें भरतकालीन त्रिपुष्कर के तीनों हिस्सों का प्रभुत्व देखने को मिलता है। जैसे ढोलक पखावज खोल आदि के विकास में आंकिक का महत्व दिखाई देता है जो तबले बाएं पर ऊर्ध्वक और आलिंग का प्रभाव आधुनिक तबले बाएं का आविष्कार एवं परिष्कार इन प्राचीन त्रिपुष्कर के खड़े भागों पर आधारित हो यह भी संभावित हो सकता है। मृदंग का नामकरण। संस्कृत भाषा का शब्द मृदंग दो शब्दों की संधि से बना है मृत प्लस अंग। मृत अर्थात मिट्टी और अंग शब्द के दो अर्थ निकलते हैं शरीर अंश अथवा भाग। अतः मृदंग शब्द के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। ऐसा वाद्य जिसका पूर्ण शरीर अथवा अंग मिट्टी का बना हो और दूसरा ऐसा वाद्य जिसके शरीर का एक अंश मिट्टी का बना हो। कुछ विद्वान अंग का अर्थ शरीर निकालते हैं और कुछ मृदंग का अर्थ मिट्टी के अंग वाला वाद्य ऐसा मानते हैं किंतु अंग शब्द का अर्थ हिस्सा भी निकलता है। अतः यहाँ पर प्रश्न उद्भवित हो सकता है पृष्ठ संख्या 24 कि यदि पूर्ण कलेवर का रूप ही बनाना होता तो अंगी शब्द का प्रयोग क्यों न किया गया होता क्योंकि अंग से ज्यादा अंगी शब्द पूर्ण कलेवर के रूप को अधिक स्पष्ट करता है। अतएव संभव है कि प्राचीन काल में मृदंग के बाहर का कलेवर भले ही मिट्टी का बनता हो किंतु उसके आधार पर उनका नामकरण मृदंग न भी पड़ा हो। वैसे मृदंग मिट्टी का ही नहीं पुरातन समय में बीज वृक्ष की लकड़ी का भी बनता आया है। पंडित सोमेश्वर कृत भरत कोश के श्लोक 504 से इस कथन की पुष्टि हो जाती है। अतएव जिसके शरीर का अंग एक अंश अथवा हिस्सा मिट्टी का हो वह मृदंग है ऐसा अर्थ निकालना मुझे असंगत नहीं लगता। अब प्रश्न यह उठता है कि मृदंग का कौन सा अंग मिट्टी का है। प्राचीन काल से हमारे भारतीय तालवाद्यों पर स्वर की उत्पत्ति अर्थात चमड़े पर स्वर का निर्माण महत्वपूर्ण बात समझी जाती थी। यद्यपि पाश्चात्य संगीत में हार्मोनिक नोट्स का अत्यधिक महत्व है तथापि वहाँ के किसी भी अवनद्यवाद्य पर स्वर की उत्पत्ति नहीं होती किंतु हमारे यहाँ के अवनद्यवाद्यों पर स्वर मिलाने का चलन रहा है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में अवनद्यवाद्यों पर स्वर की उत्पत्ति के लिए मिट्टी की लेप स्याही की विस्तृत चर्चा की है। नदी किनारे की श्यामा मिट्टी से किस प्रकार लेप तैयार किया जाता था इस प्रकार का वर्णन जिन्होंने नाट्यशास्त्र में किया है इससे यह पुष्ट होता है कि भरत मुनि के पूर्व भी वहां मृदंग को स्वर में मिलाया जाता था। त्रिपुष्कर के तीनों मुखों पर स्वर निर्माण की चर्चा भरत मुनि ने की है। उन दिनों यद्यपि विज्ञान का आज जैसा प्रचार नहीं था, किंतु हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों तथा संगीतज्ञों ने क्रियात्मक रूप से देख लिया होगा कि मिट्टी के लेप से चमड़े पर स्वर की उत्पत्ति हो सकती है, तालवाद्य पर स्वर की उत्पत्ति संसार को भारत की ही देन है। स्वर निर्मिति की इस बात को प्राचीन काल से इतना महत्वपूर्ण समझा गया होगा कि वह लेप जो कि उन दिनों श्यामा मिट्टी का हुआ करता था और जो इस तालवाद्य का एक महत्वपूर्ण अंश था, इसके ऊपर से इस वाद्य का नाम ही मृदंग पड़ गया हो, वह संभवित लगता है। अतः मृदंग नाम मिट्टी के अंग वाले वाद्य से ही नहीं, बल्कि जिसके पूर्ण कलेवर का एक अंश अर्थात जिसकी स्याही श्यामा मिट्टी की लेप से बनाई जाती थी, जिसके कारण स्वर का निर्माण संभावित हो सका हो, उस लेप के ऊपर मृदंग नाम पड़ा हो, ऐसा मेरा अनुमान है। यद्यपि आज तो उस लेप में काफी सुधार हो चुका है तथा मिट्टी का अंश ही उससे मिट चुका है। मृदंग तथा पखावज में अंतर। हम देख चुके हैं कि प्राचीन एवं मध्यकालीन संगीत का प्रमुख तालवाद्य मुदंग मृदंग था। मध्यकालीन ध्रुपद गायन शैली में मृदंग का ही प्राधान्य सर्वसम्मत था, किंतु मृदंग के स्थान पर पखावज शब्द का प्रयोग मध्य युग के आरंभ में हुआ, जो मुगल काल के बाद देखने को मिलता है। 15वीं शताब्दी पर्यंत किसी भी पुस्तक में पखावज शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। पिछली कुछ सदियों में तालवाद्य के ऐतिहासिक इतिहास के प्रति जो उदासीनता रही, जिसके फलस्वरूप हमारा प्राचीन कालीन मृदंग पखावज कैसे बन गया, पृष्ठ संख्या 25, इसका कोई ग्रंथाधार हमें प्राप्त नहीं होता। केवल अनुमान किया जाता है कि मध्ययुग में ध्रुपद धमार गायकी की संगत के लिए भरतकालीन मृदंग की आकृति एवं आवाज में कुछ परिवर्तन हुआ होगा, जिसके फलस्वरूप वह पखावज कहलाने लगा होगा। यह परिवर्तन ध्रुपद धमार गायकी के अनुरूप संगत ही संगत की क्रियात्मक दृष्टि को लक्ष्य में रख कर गांभीर एवं रसोत्पत्ति के हेतु हुआ होगा। वैसे देखा जाए तो पखावज भरतकालीन मृदंग का परिष्कृत रूप ही है। भारत की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से मृदंग शास्त्रीय शब्द है और पखावज लोक व्यवहार का प्रयुक्त रूप। मध्ययुग में उत्तर भारत में मृदंग का क्रियात्मक नाम पखावज प्रसिद्ध हो चुका था। मृदंग के उस परिष्कृत रूप में अधिक अंतर न होने के कारण कभी वह मृदंग के नाम से तो कभी वह पखावज के नाम से संबोधित किया जाता था। अकबर युगीन कलाकारों तथा वाद्यों का वर्णन करते हुए आचार्य बृहस्पति ने भी पखावज का उल्लेख संगीत चिंतामणि में किया है। मध्यकालीन अष्टछाप काव्य रचनाओं तथा भक्त कवि सूरदास के पदों में हमें मृदंग एवं पखावज दोनों शब्दों के प्रयोग देखने को मिलते हैं। भक्त कवि सूरदास जी जहां एक ओर कहते हैं, अतीत अनागत संगीत बिंच तान मिलाई, सुर ताल अरु नित्य ध्याई पुनि मृदंग बजाए, वहां दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि बाजत ताल पखाउज झालरी गुण गावत ज्यों हर्षत नाचति नटी सुलय गत उमगत सुर सुर सुमन सुर बरसत। होरी के कुछ पदों में भी सूरदास जी के मृदंग और पखावज दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। ताल मृदंग उपंग चंग बीना डफ बाजे तथा बाजत ताल पखावज आवज ढोलक बीना झाज। मध्यकालीन शास्त्रकार पंडित अहोबल ने संगीत पारिजात में मर्दल को ही मृदंग कहा है, जिसका वर्णन पखावज से मिलता जुलता है। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि मृदंग और पखावज में क्या अंतर है, क्या ये दोनों एक वाद्य के दो नाम हैं? भारतीय संगीत कोष के प्रणेता श्री विमलाकांत राय चौधरी पखावज की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि पृष्ठ संख्या 26, पखावज फारसी शब्द पख आवाज से बना है। पख आवाज का अर्थ है जिसमें मंद ध्वनि निकलती हो, अर्थात मृदंग के साथ पखावज का आकृतिगत पार्थक्य है। पखावज को ही मृदंग कहा जाता है। साधारणतः विद्वानों में यह मत प्रचलित है कि मिट्टी के अंग वाला वाद्य है और लकड़ी के अंग वाला वाद्य पखावज। पंडित रामकृष्ण राय कवि कृत भरत कोश में श्री सोमेश्वर का श्लोक संख्या 504 है, जो मृदंग की रचना बीज वृक्ष की लकड़ी से बताता है। यद्यपि मृदंग शब्द का अर्थ यही माना जाता है कि जिसका अंग मिट्टी का हो, तथापि उसकी रचना में लकड़ी का प्रयोग होता था। इस तथ्य का प्रमाण सोमेश्वर के इस श्लोक से प्रतिपादित होता है। अतः यह धारणा उचित नहीं लगती कि मिट्टी के अंग वाला वाद्य मृदंग है और लकड़ी के अंग वाला वाद्य पखावज। कुछ विद्वानों ने मृदंग तथा पखावज को एक ही वाद्य के दो नाम बताते हैं, जबकि कुछ लोगों के मतानुसार पखावज आकृति में बड़ा होता है और मृदंग छोटा। मुगल युग में आम जनता के बोल चाल का हिंदी शब्द पखावज अथवा पखावज मृदंग के स्थान पर प्रयुक्त होने लगा होगा। वैसे मृदंग शब्द का पखावज शब्द में रूपांतर उसके क्रियात्मक रूप पर विशेष आधारित है। पखावज का अर्थ है पख यानि पखुआ, बाह का वह भाग जो बगल में पड़ता है, और बाज अर्थात बजाना। अतः पूरे बाहु से जो बजाया जाता हो वह पखावज है। कुछ अन्य लोगों के मतानुसार पखावज शब्द पक्षवाद्य से बना है। पक्ष के दो शाब्दिक अर्थ हैं, पहला भुजाएं, दूसरा वस्तु के दो छोर। वाद्य के दोनों मुखों पर दोनों भुजाओं के सहयोग से जो बजाया जाता हो वह पक्षवाद्य है। तत्पश्चात बोल चाल की भाषा में पक्ष का पख और वाद्य का बाज हो गया होगा और इस प्रकार पखावज शब्द प्रचलित हो गया होगा। गुजरात, महाराष्ट्र तथा बंगाल में आज भी पखावज को पखवाज कहते हैं। आतोद्य नाम का एक वाद्य एक शब्द संस्कृत में मिलता है जिसका अर्थ है दैट पिच इज स्टक, अर्थात जो घर्षण से बजाया जाए। आतोद्य का अपभ्रंश शब्द आवज है, जिसका उल्लेख हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। पख यानि बाहु और आवज यानि वाद्य अर्थात पखावज। पक्ष प्लस आवज से पखावज और पक्ष वाद्य से पखवाज शब्द बना है। दोनों का अर्थ एक ही है और शब्द आजकल व्यवहार में प्रयुक्त होते दिखाई देते हैं। ऐसा अनुमान है कि ध्रुपद गायन शैली के प्रारंभिक काल से ही लोगों ने मृदंग के परिष्कृत रूप को उसके क्रियात्मक प्रयोग के अनुसार पक्षवाद्य कहना आरंभ किया होगा। बाद में वह पखावज या पखवाज बन गया होगा।